यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विग्रहे राधे तं नय माम् हम लोग यहां से प्रचार में निकले और ऑस्ट्रेलिया फिजीलैंड मलेशिया इंडोनेशिया बाली आदि देशों में सिंगापुर इत्यादि देशों में बड़ी अच्छी तरह से प्रचार किए और वहाँ से फिर लौटे। फिजी एक देश है ऑस्ट्रेलिया से उस पार, जहाँ लोग कहते हैं कि ये काली जहाँ रहते थे रमणिक द्वीप है। वेंट टू फिजी हेयर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कंट्री वेर टेलिंग दैट दिस इज द प्लेस ऑफ रमणिक द्वीप ऑफ काली दमन कालिया का, यहाँ पर कृष्ण ने उसको फिर से लौटा दिया था। अभी वहां पर सांप की पूजा होती है, सांपों की, सांप नहीं है किंतु सांपों की पूजा। देयर आर नो सर्पेंट नाउ, ऑलमोस्ट ऑल वैनिश्ड, बट येट दे वर्शिप स्नेक गॉड। वहाँ पर हमारे हिंदू लोग अधिक हैं हिंदुस्तान से गए हुए, जिसमें कि विशेष करके उत्तर भारत के लोग हैं, बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोग, गुजरात के कुछ लोग हैं वहाँ पर, और सभी हिंदी में प्रवचन सुनना चाहते हैं, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में। कहते हैं कि आप दो तीन जगहों में ऑफर दिया कि आप यहाँ पर 7 दिन का कम से कम या 12 दिन का भागवत हो, कहिए अच्छी बात है, मैं जब पिछली बार आऊँगा अगली बार तो मैं करूँगा। दे रिक्वेस्टेड मी ऑल हिंदूज देयर स्पीकिंग हिंदी ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी दैट हियर श्रीमद् भागवतम ऑफ 12 days शुड बी डन, इट मे बी दैट आई मे डू विथ ऑल द ब्रह्मचारी जैन, वी विल डू दैट। सनातन धर्म के वहां पर मंदिर हैं और मंदिरों में बहुत आव भगत उन लोगों ने की, हमारे विचारों को बहुत सुना का जी। आज तक फिजी में बहुत से लोग आए हैं कि हम लोग उनसे अनुप्राणित नहीं हुए, जैसे कि आपके विचारों से हम लोग हुए, हम लोगों में नव जीवन का संचार हुआ। वहां पर हमने सनातन धर्म के संबंध में महाप्रभु जी की वाणी का बतलाया, जिसमें थोड़ा सा अंश आज बतलाऊंगा आप लोगों को। बाली एक प्रदेश है जहां पर बाली के नाम से बाली, बाली माने सुग्रीव का भाई बाली, और वहां पर उसके चिन्ह है अभी, भारतीय संस्कृति की छाप वहां पर है अभी भी, वो सब चीजों की, रामायण महाभारत विशेष करके रामायण इत्यादि की लीलाएं वो लोग प्ले करते हैं और वैसा ही सब ये रखते हैं। रामायण कई कथाओं का अपनी भाषा में वो लोग सब करते हैं। ये मलेशिया में दक्षिण भारत के लोग अधिक है और उस सब दक्षिण भारत से भी पहले इस्कॉन से संबंधित, अब धीरे 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 सभी दक्षिण भारत वाले हम लोगों के विचारों को सुनकर के बड़े प्रभावित हुए और बहुत सब हम लोगों के विचारों में आ गए, वैसे हरिनाम कर रहे हैं। इस तरह से सिंगापुर में वैसे ही बहुत से हिंदू लोग हैं, बहुत वहां पर भी हम लोगों के विचार सुन करके बड़े प्रभावित हुए। सिंगापुर में दक्षिण भारत में मिनी इंडिया नाम दिया, वहां पर वहां के बड़े टाउन में सिंगापुर में मिनी इंडिया, दक्षिण भारत के वहां पर सब भरे पड़े हैं, वहां पर भी हिंदी में सुनना चाहते हैं। वहां पर प्रचार के बहुत से क्षेत्र हैं, बहुत क्षेत्र, वो लोग ग्रहण कर लेते हैं। हमारे भारत में ये है, मायावाद इतना भीतर से लगा हुआ है, इंटरेस्टेड लोग हैं यहाँ के मायावाद में, उनको मायावाद और बहुत देवताओं की पूजा को छोड़ा करके एकांतिक पूजा में लगाना कृष्ण के बड़ा भारी कठिन है। देवी देवताओं की पूजा ये लोग नहीं छोड़ सकते। हम समझते हैं कि यहाँ पर जितने आदमी बैठे हैं मथुरा के, इनमें से ऐसे ही 5-10 ऐसे होंगे जो कि गणेश शंकर और सबकी दुर्गा की पूजा नहीं करते हो। आते हैं, तिलक भी धारण करते हैं, किंतु सबकी पूजा करते हैं। और वहाँ हम जिनको कह देते हैं वो सब लोग छोड़ करके एकांतिक रूप में राधा कृष्ण का भजन करते हैं। हियर इन इंडिया इट इज वेरी हार्ड टू प्रीच बिकॉज दे कैनॉट गिव अप द वर्शिप ऑफ दुर्गा, काली, गणेश, शंकर, हनुमान, नेवर, वेरी हार्ड। इवन टेकिंग हरिनाम एंड दीक्षा दे विल डू, किंतु वहां पर ऐसा, बट दे आर नॉट लाइक सो। बट देयर इज समथिंग दे विल टेक एंड आफ्टर सम टाइम दे मे गिव अप, वो लोग छोड़ देते हैं। यदि संग नहीं हो तो वो छोड़ देंगे, किंतु यहाँ वाले जैसे हैं वो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा है, बुरा है, कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे, वहां वाले छोड़ देंगे। दे विल गिव अप देयर वर्शिप ऑफ राधा एंड कृष्ण एंड चैंटिंग रिमेम्बरिंग व्हेन देयर विल बी नो गुड एसोसिएशन। बट हियर नॉट, व्हाट दे आर डूइंग फ्रॉम जनरेशन दे आर डूइंग एंड दे विल डू, अपने वंश परंपरा से वो लोग करते रहते हैं।
तो
हमने वहां पर कुछ भाषण दिए, उसका थोड़ा सा एक झलक आप लोगों को बतला रहा या नवदीप ने मैंने। बहुत से अच्छे अच्छे भाषण है उनका, यदि ट्रांसलेशन करके और उसको पत्रिका में दिया जाए उसमें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ओंकार ब्रह्म का यह शब्दाक्षर, ब्रह्म अक्षर, ब्रह्म शब्द, ब्रह्म या भगवान का शाब्दिक अथवा आक्षरिक अवतार ओंकार है। इसी से गायत्री प्रकाशित हुई या इसी की व्याख्या गायत्री, गायत्री से सारे वेद प्रकट हुए और सारे वेद फिर 4 भाग में विभाग इत्यादि किए गए और इसके बाद में व्यास जी ने इसके 7 तात्पर्य को ग्रहण करने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए, लोग समझेंगे वेदों के भाव इतने गहरे हैं कि उनको समझना बड़ा भारी कठिन है, इसलिए उन्होंने कुछ सरल सहज रूप में पुराणों में उसकी व्याख्या की। किंतु वो ऐसे अलंकारिक भाषा में ये पुराण हैं जो साधारण लोग भी समझें, किंतु उसकी गहराई को छूना बड़ा भारी कठिन है। पुराण में उन्होंने दिया, पुराण भी कठिन अलंकारिक भाषा में होने के वजह से सब लोगों की सुविधा के लिए कुछ रोचक बनाते हुए उन्हीं विषयों को महाभारत में दिया। महाभारत का भी प्रतिपाद्य वही कृष्ण है, वेदों का भी प्रतिपाद्य वेदस्य अहम सर्व वेदस्य अहम एव वेद्य, समस्त वेदों को वही प्रतिपादित है। गायत्री में भी वही है, ओंकार में भी वही है। गायत्री गायन करने से त्राण करती है और उसमें छंद है, उसमें 3 विभाग हैं और ये सब गायत्री भी उन्हीं को, कृष्ण को भर्गः देवस्य धीमहि, गायत्री की उपासना श्री लक्ष्मी हमारे राधा जी की उपासना है, स्त्रीलिंग उसमें है, स्त्रीलिंग माने शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, पराशक्ति की सर्वोच्च अवस्था जिसमें है, उसके लिए धीमे ही उनको ध्यान करते हैं। कृष्ण का नहीं, गायत्री का प्रतिपाद्य कौन है? श्रीमती राधिका जी है, इसलिए धीमे ही उनको, जो परम पुरुष की अत्यंत प्रिया है, सिद्ध बिलवेड ऑफ कृष्ण, सो धीमे ही एनसी शुड कम इन अवर हार्ट, प्रचोदयात, वो हमारे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त। इसी प्रतिपाद्य विषय को करने के लिए ये पुराण, अंत में महाभारत, महाभारत में ऐसी लड़ाई झगड़ा का लेकर के किया है कि साधारण आदमी भी इसके ऊपरी भाव को समझ लेंगे, किंतु भीतरी भाव में प्रवेश करना कठिन है। भीम में दुर्योधन में युद्ध हो रहा है, भीष्म और अर्जुन में युद्ध हो रहा है, उनमें परस्पर बातें हो रही हैं, इंटरेस्टिंग करने के लिए जो उसमें बातें हुई, लक्षागृह है और सब बातें हैं, अर्जुन का द्रौपदी का को वर्ण करना है, ये सब बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मनोहारी कथाएं उसमें थी, किंतु कथाओं का देने का तात्पर्य क्या था? भाई भर्गो देवस्य धीमहि, सबका प्रतिपाद्य विषय एक है। इसके बाद ही उनका मन नहीं भरा, पुराणों के संकलन करने के बाद में, अरे लेकर के जाओ, आप बच्चों को लेकर के यहाँ नहीं आना चाहिए, उसको ले आई हारमोनियम। अब इसमें सनातन धर्म की बात मैंने बतलाई, ये सब चीजें सनातन है। ओंकार कब से है? अनादिकाल से है, गायत्री भी अनादिकाल से है, उसका प्रतिपाद्य विषय भी अनादिकाल से है, वो कभी भी अदलता बदलता नहीं है, सदा के लिए है, सदा रहेगा ये। इसीलिए गीता में उन्होंने बतलाया, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव एक सनातन है। फिर वो वस्त्र जैसा धारण करता है, प्रशांत जीर्णानी यथा विहाय नमान गृहणाति नरो पराणी, नहीं छिदंत इसके बाद, इसका थाणु रचलो आयं, किसके लिए? जीवात्मा के लिए, इसलिए जीवात्मा एक सनातन वस्तु है। वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में ये सब बतलाया गया। और एक और सनातन है, सनातन का भी सनातन, वो कौन है जिसे ये सनातन सब निकले हुए हैं? ओ भाग्यम, ओ भाग्यम, जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये पूर्ण ब्रह्म सनातन कौन है, किसके लिए कहते? जो ब्रज के लोगों के मित्र हैं, किसी के प्रियतम हैं, किसी के बंधु हैं, किसी के प्राण प्रियतम सखा है इन ब्रजवासियों के, किंतु वो है कौन? पूर्ण ब्रह्म है, सनातन ब्रह्म है। कौन कह रहे हैं इसको? कौन रहा? ब्रह्मा जी कह रहे हैं सर, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने और कई कितनी बार कहा है चतुर्श्लोकी में कि मैं ही पहले था, अहमेव अस्माग्रे, सत असत, सत माने जो व्यक्त है, असत माने जो नहीं व्यक्त है, ये सब हमसे पहले ये मैं था, और मैंने ही ब्रह्मा जी को, या ब्रह्मा जी को कृष्ण ही उपदेश दिया। और चतुर्थ श्लोक में वो दूसरा श्लोक क्या है, नहीं नहीं इसके ऊपर वाला इससे इससे पहले का हाँ ज्ञानम में परमम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम। कृष्ण कहा जी मैं लो मैं देता हूँ तुम लोग। ब्रह्मा जी को सब ज्ञान दे दिया किंतु उनको कुछ नहीं आया, उपलब्धि नहीं हुई, उपलब्धि नहीं हुई। सब ज्ञान बतला दिया, जैसे हम लोग सब भक्ति बतला रहे हैं किंतु भक्ति नहीं आ रही। तब उन्होंने अपना हाथ ऐसे कर दिया, गृहाण गतितम माया, हमारी कृपा से तुम सबको प्राप्त। और साथ ही साथ उनकी प्रेमा भक्ति की अनुभूति हुई। कृष्ण कैसे सबसे पहले हैं, सनातन वस्तु हैं, ये जीवों का कृष्ण से उस नित्य सनातन से और इस सनातन से जीव का क्या संबंध है, इसी का नाम सनातन धर्म है। ये कभी भी लुप्त नहीं होता। एक सनातन परब्रह्म कृष्ण भगवत्ता की सीमा, ओम प्रकाश के भी, ओम ओंकार के भी मूल, ओंकार भी इन्हीं से उपस्थित हुआ। ये उनका अक्षर ब्रह्म रूप है कृष्ण का। कृष्ण को देखना सहज नहीं किंतु अक्षर के रूप में ये प्रकाशित है, इसलिए देखा। यही इसी की उपासना की जाए तो धीरे धीरे खारे समुद्र को मंथन करने से मेघ, मेघ से वर्षा, वर्षा से जीवन दान मीठा पानी ये मिलता है। ऐसे ही ओंकार एक खारा भगवान ब्रह्म का रूप है जिसको आदमी को समझना कठिन है, उनसे संबंध स्थापित करना भी कठिन है। तो ये कृष्ण जो परब्रह्म की चरम सीमा है, ये हुए उपास्य। और उपासक कौन हुआ, ये जीव तत्व। दोनों के बीच का जो संबंध है ये उपासना, ये उपासना ही नित्य सनातन धर्म है। किंतु कौन सी उपासना, जो भागवत में दी गई, गीता में दी गई, जो वेदों और उपनिषदों में दी गई, वो उपासना। और सब जो देवता देवियों की उपासना ये नहीं, इसलिए कौन सी उपासना, जो भागवत पहले दिया गया गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, पहले ये। और इसके बाद में महाप्रभु ने कहा ये हो बाह्य, तब वो ले गए ज्ञाने प्रयास समुद्पाश्य नमन्ते एव जीवन्ते सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता तन्वांग मनोभि प्रायशो अजित जीतो अपि त्रैहत्तर। ये सब शरणागति से भी बहुत ऊपर। भक्ति एक ऐसी चीज है जो भागवत में, गीता में, उपनिषद में दिया गया, जो यही जीवों का, जीवों के साथ में भगवान का संबंध है और उनकी ये रिलेशन है। भक्ति रेवैनं नयति, भक्ति रेवैनं दर्शयति, सो पुरुषः भक्ति। इसलिए ये वेदों में कहा गया, ये संबंध है भक्ति, भक्ति के अतिरिक्त और दूसरा कोई भी संबंध कृष्ण के साथ हमारा नहीं है। इसलिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ, इसी को कैसी उपासना, कैसी उपासना सबसे श्रेष्ठ है, जो भगवान के पास में जो भक्ति ले जाए। भक्ति है क्या, पराशक्ति की, सर्वोच्च पराशक्ति की लादनी और संधनी है, संबित का सार जो संधनी के ऊपर में प्रकाशित होता है, यह है प्रेम। भगवान के साथ में जो प्रेम है यही हमारा नित्य सनातन धर्म है। किंतु इतना ही कहने से नहीं चलेगा, जतवे यह वस्त्र बतलाया, जस देवी पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्य कर्ता हि प्रकाशन्ते महात्मनः। ये बतलाया इंगित में वेदों में, पुराणों में कुछ कुछ बतलाया और श्रीमद् भागवत में अच्छी तरह से इसको बतलाया। कौन सी उपासना, कौन सी भक्ति हमको भगवान के पास में ले जाएगी, भक्ति साधारण रूप में ले जाएगी भगवान के पास में। अब इसके लिए जैसे शांडिल्य सूत्र में लिखा क्या, सापरानुरक्ति ईश्वर, ईश्वर में परा अनुरक्ति, अनुरक्ति जो है प्रीति है, स्नेह है, जो ये परा था तो प्रेम भी साधारण नहीं, अनुरक्ति भी साधारण नहीं, परा माया से अतीत हो, जो कृष्ण को वशीभूत करती है, इस भक्ति का नाम, इसका नाम है भक्ति। परानुरक्ति ईश्वरे सब भक्ति, वो भक्ति है अनुरक्ति। नारद इत्यादि ऋषियों ने भी इसका आविष्कार किया, उन्होंने भी ऐसे ही कहा। श्रीमद् भागवत में इसको विशेष करके और खुलासा करके कि कौन किया, चैतन्य महाप्रभु अपने अवतार में किया। अब श्रीमद् भागवत में हम चलेंगे, ये भक्ति क्या है। पहले उन्होंने लिखा सवई पुंसांग परो धर्मो दतो भक्ति रधक कजे अहेतुक्य प्रतिहतात्मा जाता संप्रसिद्ध। जिसके द्वारा जो भक्ति, भक्ति माने सेवा, जो सेवा, जो चित्त की वृत्ति निरंतर तैल धारावत अविच्छिन्न गति से हो, किसके प्रति, अथोक्षज के प्रति। अथोक्षज माने क्या, इंद्रियों से अतीत जो है अर्थात नारायण, लक्ष्मी का नारायण के प्रति जो भाव है, ऐसे भाव को पहली स्थिति में उन्होंने भक्ति बतलाया, क्योंकि समस्त इंद्रियों के द्वारा अपने प्रभु की जिस प्रकार से सेवा करती है। किंतु व्यास जी यही कह करके संतुष्ट नहीं हुए, इसे और बहुत आगे ले गए, विशेष करके वेदों का विभाग कर उपनिषदों को भी प्रकाशित कर, पुराणों को प्रकाशित कर, महाभारत में गीता जैसे उपनिषद को प्रकाशित कर, और उसमें जीव कृष्ण का संबंध दिखला करके भी संतुष्ट नहीं हो सके, तो नारद जी की कृपा से अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायांच जदापाश्यम, उन्होंने परम पुरुष को पर संपूर्ण रूप में देखा। संपूर्ण रूप में देखने का क्या तात्पर्य, उनका जितना जो कुछ था रूप, सर्वोत्तम रूप, भगवान के जितने भी रूप हैं उनमें सर्वोत्तम रूप निसिंह, राम, पराग इत्यादि हैं, किंतु इनमें भी एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान से, राम इत्यादि हैं भगवान किंतु स्वयं भगवान एक ही चंद्र विविध रूप में दिखता है, वैसे एक ही ब्रह्म भगवान विविध रूपों में उपासना के भेद से दिख पड़ते हैं, इसलिए उनको बतलाया कृष्णस्तु भगवान से। वो कैसे, कैसे जो बाल्यकाल से जिनका जन्म हुआ मथुरा में और गोकुल में, मथुरा में जैसे प्रकाशित हुए, गोकुल में जैसे उन्होंने जन्म लिया, और वहां से जितनी भी लीलाएं हुई, बचपन में कितने सुंदर हैं, उनकी कैसी लीलाएं हैं, यशोदा जी का बात्सल्य कैसे है, इसके बाद में पौगंड में अपने सखाओं के साथ में गोचारण इत्यादि जो कर रहे हैं, बंसी वादन भी अब करने लग गए हैं, अब उठती हुई किशोर अवस्था में वृंदावन की जो लीलाएं हैं, एक ही रात में, किंतु रात कितनी लंबी, ब्रह्मरात्रि, सारी लीलाओं का एक तरह से संकलन है, उसमें समस्त लीलाएं हैं, जितने भी लीलाएं हैं किशोर की, विशेष करके गोपियों के साथ की, सारी लीलाएं उसमें है। इसको भी उन्होंने देखा, यशोदा जी उनके कमर को बांधते हुए देखा, दामोदर लीला भी देखा, गोपियों के पैरों में पड़ते हुए कृष्ण को देखा, वो गोपी गीत इत्यादि भी देखा, सब सुना, गोवर्धन लीला इत्यादि भी देखा, और भ्रमर गीत भी देखा, सारी ब्रज लीलाओं को संपूर्ण रूप में देखा, इसके बाद में कुछ द्वारका लीला इत्यादि भी देखा, और जीवों के कल्याण के लिए जस्या वै सूयमायण कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उपपद्यता पुरुषा शोक मोह भया, जीवों के कल्याण के लिए उसका संकलन करके उसको प्रकाशित करके श्रीमद् भागवत को प्रकाश किया। इतना देने के बाद में भी संतोष नहीं हुआ, कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु है, अखिल रसामृत मूर्ति प्रशमर रुचिरुद्ध तारका पाली फलित श्यामल राधा प्रयान विदुर जयति। कृष्ण द्वादश रसों के समुद्र था और समुद्र है, जो अपने रसों से सबको वशीभूत कर लेते हैं, ललिता इत्यादि को भी, किंतु राधिका के वशीभूत है अंतिम में जो दिया गया राधा, राधा प्रयान मैंने क्या, कृष्ण प्रिया राधिका नहीं, राधा के प्रिय माने क्या, राधा के वशीभूत रहने वाले जो कृष्ण हैं, उनके प्रेम के वशीभूत हैं, उस कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। यदि भक्त स्वामी सिंधु नहीं होता ग्रंथ, उज्ज्वल नयन मणि ग्रंथ इत्यादि नहीं होते, तो कृष्ण के माधुर्य को समझ लेना बड़ा भारी कठिन था। इसलिए रूप स्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सारी शक्ति स्फूर्ति उनमें कराई, जिसे हमारे माधुर्य को जान लें। कंस ने कृष्ण को देखा, जरासंध ने कृष्ण को देखा, दुर्योधन ने कृष्ण को देखा, किंतु उनके सौंदर्य से वो लोग आकर्षित हुए कि वो लोगों का क्रोध और बढ़ गया मारने की चाह, क्यों, कृष्ण तो वही अगासुर बकासुर कृष्ण मुरली लिए हुए बजाते हुए जा रहे हैं और उन पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि उनके अंदर में प्रेम का आस्वादन करने वाला जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, आधार नहीं है। इसलिए अभी भी कृष्ण हमारे सामने आ जाए विशेष कुछ लाभ नहीं हुआ, कहेंगे कृष्ण हमको एक सुंदर लड़की से शादी करा दीजिए और हमको पुत्र हो जाए और करोड़ों डॉलर मिल जाए, रुपये मिल जाए और संसारी की ये चीजें, प्रभु इतने रोग हमको ना, कहेंगे और कुछ मांगो, और नहीं मांगो मांगने, क्योंकि वो आधार नहीं है, नहीं समझते हैं, इसलिए अभी वो दर्शन नहीं देंगे। जब वो प्लेटफॉर्म तैयारी हो जाएगा, शुद्ध सत्व हृदय में आएगा, वो राधा जी का ही लादनी और संबित का भाव जब आएगा, तब हम लोग उनको समझ सकते हैं, उनकी सेवा हो सकती है, इसके पहले नहीं हो सकता। इसलिए रूप गोस्वामी के अंदर में उन्होंने शक्ति का संचार किया, कौन सी शक्ति का, ये शक्ति का कृष्ण सोच रहे हैं लीला के अप्रकट के पश्चात, कृष्ण की लीला प्रकट हो गई इसके पश्चात में सोच रहे हैं, जगत में मुझसे सुंदर और कोई नहीं, मुझे देख करके लोगों की आंखें सुशीतल हो जाती हैं, सब तो नहीं होगा, जो उच्च कोटि के भक्त हैं वही उनका दर्शन करें, हमारे देखकर के जितने भी चराचर प्राणी हैं सभी लोग, सभी के नयन जुड़ा जाते हैं, अत्यंत सुशीतल हो जाते हैं, किंतु मैं राधिका जी के दर्शन करने से हमारे नयन सुशीतल हो गए, हमारी बंसी की बहुत मीठी आवाज है, मैं विश्व के सबको आकर्षण कर लेता हूँ बंसी की आवाज से, किंतु मेरी बंसी और मधुर बोली भी हार मान जाती है श्रीमती राधिका के सुंदर मधुर वाणी से, मैं सब कुछ विस्मित हो जाता, हमारे अंग सुशीतल हैं, जिसकी सुशीतलता से विश्व सुशीतल हो सकता है, किंतु श्रीमती राधिका के स्पर्श में मैं, मेरा हृदय सुशीतल हो जाता है, किंतु विचार कर ले है विपरीत, किंतु विचार यदि किया जाए तो ये पहले हम देखते हैं, ये गोपियां कृष्ण राधा जी की तो बात को छोड़ो, गोपियां कृष्ण की सहेली हैं, मंत्री हैं, दास दासी हैं, यहां तक कि गुरु भी हैं, नीचे से ऊपर जो कुछ जितना संबंध जगत में है सब कृष्ण का गोपियों के साथ में, गोपियां उनके प्रेम की गुरु भी हैं, गोपियां सब विषय में श्रेष्ठ हैं, कृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं, तो भी एक बात है विशेष, वो क्या, राधा जी को मैं देखता हूँ, क्या हो गया? राधा जी हमें देख करके पागल हो जाती हैं ना? राधा उस समय उनका दुख कैसा होता है? महाविप्रलंब भाव, स्थचर प्राणी उनके इस दुख को देख करके मूर्छित हो जाते हैं। मैं राधिका जी को देखता हूं जो हमसे सुंदरी हैं, किंतु हमारा ऐसा नहीं, क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? दूसरी बात, हाँ तो क्यों नहीं होता, क्या कारण है? मैं, मेरा रूप भी बहुत सुंदर है, मुझे देख करके राधिका जी को जैसा भाव होता है, राधिका जी को देख करके मुझे ऐसा नहीं होता, क्यों? हमारा जो जो रूप है, गुण है, लीला है, इसको दूसरे सभी लोग आस्वादन करते हैं, किंतु राधिका जी सर्वोच्च स्थिति में आस्वादन करती हैं। क्यों? और उनको कौन सा सुख प्राप्त होता है जो इनकी ऐसी दशा होती है? कारण क्या है? तो उन्होंने देखा ये मेरे अंदर में कुछ ऐसी चीज है जो सबको उन्मत्त करती है, राधिका जी को भी उन्मत्त करती है, वो चीज मेरे अंदर में कुछ है, किंतु वो जब तक राधा जी की दृष्टि, राधा जी की भावना हमारे अंदर में नहीं आएगी, मैं नहीं समझ सकता। इसलिए राधा जी हमको बनना पड़ेगा, राधा जी के भावना को लेना पड़ेगा, राधा जी की प्रणय, हमारे प्रति जो उनका प्रणय है, वो जब तक प्रणय नहीं आएगा तब तक मैं नहीं समझ सकता, मेरे लिए समझना बड़ा कठिन है। इसलिए राधा या प्रणय महिमा की दृष्टि, राधा जी का प्रणय की महिमा कैसी है, हमारे इन सब माधुर्यों को किस रूप में वो ग्रहण करती हैं और उनका कौन सा सुख होता है? इसलिए राधा जी का उन्होंने भाव लिया। कब लिया ये विचार कर रहे हैं, ये लेंगे, किंतु जब उन्होंने जन्म लिया मायापुर, उस समय उनके अंदर में कुछ कृष्ण की भावना थी, जो मैं कृष्ण हूं, किंतु उनका श्री अंग राधिका जी के श्री अंगों से ढका है, राधिका जी के कलर से, उनके श्री अंगों के प्रभाव से ढक करके सुनौला तो हो गया है, किंतु अभी भावना रही रंगी है, इसलिए वो छोटी छोटी बच्चियों के यहाँ जाकर के तुम्हारा, तुम शादी करेगी, तुम हमारी उपासना करो, ये कृष्ण का भाव है। इसलिए उस समय में कृष्ण का भाव उनके अंदर में है, रूप तो ले लिया है किंतु भावना नहीं आई, इसके लिए गुरु की जरूरत है, बिना गुरु के ये चीज नहीं आएगी। संन्यास भी ले लिया इसके लिए, तभी नहीं हुआ संन्यास लेकर के इन चीज को शिक्षा देने के लिए। अभी देखो वहां पर सात पर है, भाव में क्या दिखलाया? भगवान के रूपों को दिखलाया, राधा जी का कुछ, राधा जी किस रूप में करती हैं ये सब कुछ नहीं। अभी जब वो संन्यास लिया, संन्यास का मंत्र ही है क्या है, मैं गोपी भाव को लेता हूँ, गुरु जी उसको गोपी का भाव देते हैं, ये संन्यास का भाव। तभी नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सा हुआ, तब वो गए दक्षिण में, दक्षिण में जाकर के गुरु को ढूंढने के लिए गए, वहां राय रामानंद जी से भेटे। राय रामानंद जी कौन है? अच्छा, तो ललिता जी के पास में उन्होंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि राधिका जी का जन्म और विशाखा जी का जन्म एक समय में हुआ, इधर में विश्वभानु महाराज जी के घर में राधिका जी का जन्म हुआ, उसी नक्षत्र में, उसी राशि में, उसी समय में ठीक विशाखा जी का जन्म हुआ कमई करला में, दोनों के धुआं, दोनों के गुण एक समान। वो कौन सी राधिका नायिका है, नायिका कौन सी नायिका है? मध्या है, सब विषय में धीरा अधीरा, वैसे ही मध्या, वो मध्या सब विषयों में, अत्यंत प्रखरा भी नहीं, अत्यंत मृदवी भी नहीं, दक्षिण भी नहीं, बाम्य भी नहीं, बीच की सब। इसलिए राधिका जी के जितने भाव हैं वो सब विशाखा जी में है, इसलिए ललित सखी गुण रमी विशाखे, हे विशाखा, राधा जी को यहाँ विशाखा कहा गया, किस लिए? जो कुछ गुण आप में है वो विशाखा में, विशाखा में जो गुण है आप में है, इसलिए दोनों बराबर की है ना। यदि ललिता के यहाँ जाती तो वो पूरा शिक्षा, पूरी शिक्षा नहीं होती, इसलिए उनके पास में गए और वहां पर उनके जितने भाव हैं विशाखा जी के, सब उनमें उन्होंने संचरित किए। शिक्षा गुरु का ये क्या है, वैशिष्ट है, अपने भावों को उसमें संचरित कर देता है। सब कुछ दे दिया, कहां तक दिया, इहो बाज्य लेकर के वात्सल्य तक, सर्वधर्म सर्व नहीं नहीं सब सर्व शब्द साथ वात्सल्य सख को कहा, उसे भी और ले गए वात्सल्य को, उसे भी ले गए गोपियों के। जब गोपियों का कहा तब वो कहे और कुछ है, तो उन्होंने कहा इसके बाद में कहने वाला और सुनने वाला तो जगत में कोई है नहीं। तब उन्होंने देखा जो ठीक है, ये हमारा छात्र ठीक है कि नहीं है, विशाखा जी देख रही हैं। तब उन्होंने देखा ठीक है, ये जो है इसको दिया। इसके बाद में और सब बतलाने के बाद में तब उन्होंने एक कड़ी परीक्षा ली, ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है कि नहीं। हमने जो राधा जी के भाव इसको बतलाए हैं, शिक्षा दी है, इसको ग्रहण किया कि नहीं। इसलिए उन्होंने कहा जो ऊपर से तुमको तो गौर देख रहा हूं सन्यासी, और भीतर से देख रहा हूं तुम कौन है, काला है, किंतु है तुम कौन। तो उन्होंने साथ ही साथ में परीक्षा दी, क्या परीक्षा दी, रसराज महाभाव। तब कहते ठीक है, परीक्षा में अब पास। तब उनको 95 या 99 मार्क दिया, अभी कुछ रख लिए, अब वो जब अभिनय करने पर जब वो देखेंगे तब वो देंगे। अभी इस तरह से परीक्षा में उनको पास किया। ये जो भावनाएं जो हैं, ये क्या है, राधा जी का जो कृष्ण के प्रति सेवा की वासना है, भावना है, यही सनातन धर्म है, सनातन धर्म का सबसे ऊंचा, इसे बढ़कर के सनातन धर्म का और कोई रूप नहीं हो सकता। ये ब्रजधाम में, नित्य ब्रजधाम में, अप्रकट धाम में ये नित्य चल रहा है, और उसी का एक, उसी की एक झलक यहाँ पर 10 वर्ष के लिए उतरते, 10 वर्ष नहीं कितने के लिए, वृंदावन में उसकी झलक निकलती है, और उसमें किशोर की ये करीब 1-1.5 वर्ष की, बस यही सनातन धर्म की संपूर्ण सबसे शेष और अंतिम सीमा है, जो राधिका जी कृष्ण की सेवा, इसकी एक थोड़ी सी झलक जीवों को देते हैं। अनापित चरिं चिरात करुण्यावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पूर्वं सुन्दर द्युत कदम्ब संदीप्त सदा हृदय कंदरे स्फुरत मे सच नंदन। क्या झलक, उन्नत उज्ज्वल रस कौन सा है, वही जो राधा या प्रणयमात्रिन चीज, ये उन्नत उज्ज्वल रस है, उसको आस्वादन कर रहे हैं, किंतु स्वभक्ति, स्व माने राधिका, भक्ति माने यहाँ पर ये उन्नत उज्ज्वल रस, उसकी शोभा, उसकी एक झलक, एक कण जगत को देने के लिए, रूप मंजरियों का भाव जो कृष्ण और राधा जुगल की सेवा करती हैं, इसको देने के लिए, इसलिए बतलाया महाप्रभु जी के लिए प्रेम रस निर्जास करी से आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचार। बहुत से लोग कहते हैं कि महाप्रभु आए थे प्रेम को आस्वादन करने के लिए, प्रेम को प्रचार करने के लिए, गलत। रामचंद्र जी भी तो प्रेम का आस्वादन करते हैं, हनुमान जी भी प्रेम से सेवा करते हैं, उद्धव जी प्रेम से सेवा करते हैं, ये पांडव लोग और द्वारकापुरी की महर्षियां भी बड़े प्रेम से और ऊपर सेवा करते हैं। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु नहीं आए, किस लिए, ब्रज भक्ति का प्रकाश करने के लिए, ब्रज भक्ति को प्रचार करने के लिए, और उसी का जो अंतिम बिंदु है राधिका जी का भाव, उसको आस्वादन करने के लिए। इसलिए स्वभक्ति श्रीयम शोभा, शोभा माने क्या, जैसे लता, एक लता कृपा की पता और उसकी मंजरी, उसकी शोभा होती है, उसी प्रकार उसी को देने के लिए जगत में आए और बाकी आस्वादन करने के लिए आए। उन्नत उज्ज्वल रस का दो भाग, उसमें से एक भाग को तत्त्व भाव इच्छा वही, यीशु को देने के लिए आए थे। ये साधारण रूप में, संक्षिप्त रूप में सनातन धर्म का यह सार तत्व है। आज यहीं तक रहे। इनको हारमोनियम लाया कहाँ है? कृष्ण दास सीधा आ जाओ।